Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم قرآن مجید کی تفسیر پڑھا کرتے ہیں تفسیر معارف القرآن سے جو کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. اور آج کی کلاس میں ہم سورہ یعنی بنی اسرائیل, اس کو اسراء بھی کہتے ہیں, تو اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر رہے ہیں معارف القرآن کی جلد نمبر 5 سے. پچھلی کلاس میں ہم نے جو پیچھے سورت پڑھ رہے تھے اس کی تفسیر پڑھ کے ختم کری تھی, اور آپ لوگوں کو گروپ کے اوپر بتا دیا تھا کہ اب ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھنی شروع کرنی ہے. تو امید ہے کہ سب کے سامنے کتاب موجود ہوگی اور کوئی نوٹ بک ٹائپ کی کوئی چیز بھی موجود ہوگی جس کے اوپر آپ کچھ نہ کچھ نوٹس جو ہے وہ لکھتی رہیں گی, تاکہ جو اہم نکات ہیں, پوائنٹس ہیں, تو وہ دہرانا آپ کے لیے آسان ہو جائے. یہ بہت اہم ہے کہ نوٹ جو کچھ بنا لیے جائیں, بے شک ایک ایک یعنی صرف چند الفاظ ہی لکھ لیے جائیں وہ بھی اکثر کافی ہو جاتے ہیں, بیسیکلی ریمائنڈر کے لیے, ٹھیک ہے, یاد دہانی کے لیے چند الفاظ بھی کافی ہو جاتے ہیں. تو سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ابھی تلاوت کی گئی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد کلاس تفسیر اور معارف و مسائل. کلاس کوآرڈینیٹر نے آپ سے آپ کے ساتھ وہ صفحہ بھی شیئر کیا ہوا ہے, اس کی بات جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر, جو کہ مکی سورت ہے, یعنی ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے نازل ہوئی, ٹھیک ہے, تو ایسی صورتوں کو جو ہے وہ مکی سورت کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جو, ٹھیک ہے, سبحان کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے استعمال اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. پاکی کا مطلب کیا, صرف ظاہری پاکی نہیں, جیسا کہ ہم اپنے اردو زبان کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کو پاک کہتے ہیں کہ بھئی یہ ناپاک نہیں ہے, بلکہ ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باطنی پاکی بھی اور معنوی پاکی بھی, معنی کے اعتبار سے بھی پاک, باطن کے اعتبار سے بھی پاک, ظاہر کے اعتبار سے بھی پاک, قول کے اعتبار سے بھی پاک, عمل کے اعتبار سے بھی پاک, اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی پاک. پاک کا مطلب, اب پاک کیا, یہ ہم پاک پاک بولے چلے جا رہے ہیں, تو پاک کا کیا مطلب ہے, پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو, جس کے اندر کوئی ناپاکی نہ ہو, جس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو, جس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی خرابی اور یعنی برائی اور کمی کوتاہی کچھ بھی, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ہر قسم کے نقص سے پاک ہے اللہ رب العزت کی ذات, حتیٰ کہ جو چیز ہمارے مسائل میں بہت زیادہ اپلائی کرتی ہے, یعنی ریلیونٹ جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ہم سے بہت زیادہ جس کا تعلق رہتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی فیصلے کے اوپر جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں یا ہم ڈسٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیوں کیا, ہمیں وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, بلکہ سمجھ میں نہیں آ رہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, ठीक है, हमें जो है वो उसके ऊपर कोई एतराज होता है, हमें कोई ऐसा एहसास होता है कि जैसे ऐसा ना होता तो ज्यादा अच्छा था, ऐसा क्यों किया अल्लाह ताला ने। ठीक है, गोया कि अल्लाह ताला ने कोई मिस्टेक कर दी, कोई यानी गलती कर दी अपने फैसले के अंदर किसी चीज के बारे में। ठीक है, किसी को अल्लाह ताला को देना चाहिए था, अल्लाह ताला ने उसको नहीं दिया, किसी को अल्लाह ताला को नहीं देना चाहिए था क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो इस वजह से उसको तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको दे दिया, है ना, माल दे दिया, औलाद दे दी, राइट, और खूबसूरती दे दी और सेहत दे दी। क्यों दे दी भाई, मुझे तो वो अच्छी नहीं लगती, उसको तो नहीं मिलनी चाहिए थी। तो अल्लाह ताला ने नाउजुबिल्ला गलत फैसला कर लिया, राइट, किसी को गलत फैसला करके कुछ दे दिया, किसी को गलत फैसला करके कुछ नहीं दिया। हालांकि मैं तो चाहती थी कि उसको मिल जाए, ठीक है ना, नहीं, अल्लाह ताला गलत फैसलों से पाक हैं। अल्लाह ताला किसी के बारे में गलत फैसला नहीं करते, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना देते हैं। ठीक है, तो सुबहाना, ठीक है, अल्लाह ताला पाक हैं। अल्लजी, वो जो, ये अरबी जुबान का एक एक नाउन होता है, इस्म होता है, इस्म मौसूला इसको कहते हैं, राइट, ग्रामर पढ़ने वाली है जानती हैं इसको। तो वो जो असरा, ले गया यानी चलाया उसने, बेअब्दिही, अपने बंदे को, ठीक है, अब्द बंदे को कहते हैं, और बंदे की बात जो है वो कहाँ करें, तर्जुमे में करें कि खुलासा तफसीर में करें कि मारफुल कुरान के मारफुल मसाइल के अंदर करें, क्योंकि बंदा का जो लफ्ज है वो तो हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि हमने बंदा बनना है, हमें अल्लाह ताला ने भेजा ही दुनिया के अंदर जो है वो बंदा बनने के लिए है ना। पंजाबी में कहते हैं बंदे का पुत्र बनने के लिए, ठीक है, हम जो है वो किसी और चीज का पुत्र बने हुए, पुत्र का मतलब कहते हैं ना पंजाब के अंदर वो बेटा, ठीक है, औलाद, तो हमें तो अल्लाह ताला ने बंदे की औलाद बनने के लिए ये दुनिया में भेजा था, यानी बंदे की औलाद, बंदा, नहीं, बंदे की औलाद जो है वो गेंडा तो नहीं हो सकता ना, राइट, बंदे की औलाद जो है वो हाथी तो नहीं हो सकता, बंदे की औलाद जो है वो कुछ और तो नहीं हो सकता, बंदे की औलाद तो बंदा ही होगा ना, तो इसी वजह से वो कह देते हैं बंदे का पुत्र। ठीक है, तो बंदा बनने के लिए, ठीक है ना, हमने तुम्हें वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, ठीक है, हमने नहीं पैदा किया जिन्नों को और इंसों को और इंसानों को सिवाय इसके कि वो बंदगी करें, यानी बंदा बन करके रहें। हमारा तो मकसद है हयात ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी है, तो अगर हमें यही ना पता चले कि इसका मतलब क्या था, बंदगी होती क्या है, या हम कोई गलत मतलब इसका समझते रहें, तो फिर तो हमने अपनी जिंदगी जाया कर दी ना, और ये दूसरी तो नहीं मिलेगी, तीसरी तो नहीं मिलेगी जिसके अंदर हम पुरानी गलती को जो है वो फिक्स कर लेंगे, राइट, ये तो एक ही है और गई तो गई, उसके बाद वापस नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने यानी जो चीज सीखनी है वो क्या थी, बंदगी सीखनी है, ताकि हम बंदगी कर सकें। ठीक है ना, तो कुदरतन 2-3 दिन पहले साजिश का एक साथियों के दरमियान बात हो रही थी, कुछ हो सकता है आप में से किसी ने ऑनलाइन उसको सुना भी हो, कि अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को इस दुनिया के अंदर इसी काम के लिए भेजा कि वो अल्लाह के दूसरे बंदों को बंदगी सिखा सकें। ठीक है ना, बंदगी सिखाने के लिए तो भेजा है हमें जो है वो, यानी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने रसूलों को मैन्युफैक्चरिंग सिखाने के लिए तो नहीं भेजा ना, इमारतें कैसे बनानी है, सड़कें कैसे बनानी है, और जो है वो रोबोट्स कैसे बनाने हैं। आजकल माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को रोबोट्स बनाने की की, की, की शौक लगी हुई है ना, हत्ता के दुनियादार तो क्या दीनदार जो है वो आजकल रोबोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो रसूलों को रोबोट्स सिखाने के लिए, रोबोट बनाने सिखाने के लिए तो नहीं भेजा ना, यार AI का जो है बहुत शोर मचा हुआ है जिस वजह से रोबोट्स, राइट, या जो है वो किसी और किस्म के काम के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को नहीं भेजा, बल्कि रसूलों को बंदगी सिखाने के लिए भेजा। और सिखाने का असल तरीका क्या होता है, कोई बात सिखाने का असल तरीका क्या होता है, तो आपसे अगर हम पूछें, थोड़ा सा आपकी भी पार्टिसिपेशन रहे, किसी बात को आपको किसी को सिखाना है तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है, हमारी तरह लेक्चर देना, हमारी तरह जो है वो क्लासेस करना, जैसे हम क्लासेस करते हैं, ठीक है, लेक्चर देते हैं दूसरों को। नहीं, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, करके दिखाना, खुद अमल करना, यानी खुद वैसा बन के दिखाना, ठीक है। इसी वजह से रसूलों ने बंदा बन करके दिखाया कि देखो ये होती है बंदगी, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा तुम कर लो, तुम भी बंदे बन जाओगे, मुझे भी अल्लाह ने अपना बंदा बनाया। तो रसूल जो है वो परफेक्ट बंदे होते हैं, ठीक है, और वो इंसानों को बन करके बंदा दिखाते हैं कि बस तुम मुझे मॉडल कर लो, तुम मुझे कॉपी कर लो, ठीक है। तो बंदा बनना ही हमारी हमारी कामयाबी है। हमारी कामयाबी जो है वो स्काई स्क्रेपर बनाना, या जो है वो स्पेस शटल बनाना, या जो है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट जो है वो कुछ भी बना लेना, डिवाइसेस या पता नहीं क्या क्या, राइट। हमारी ये कामयाबी नहीं है। हमारी कामयाबी क्या है कि हम कितना ज्यादा अच्छा बंदा बन सकते हैं अल्लाह ताला का। अगर बन गए तो कामयाब, नहीं बने तो आपने जो है वो यानी कोई स्पेस स्टेशन बना लिया मार्स के ऊपर जा करके, आप कामयाब नहीं हुए, ठीक है ना। कुछ भी कर लिया आपने, आप कामयाब नहीं हुए, ठीक है। हत्ता कि किसी के साथ बड़े अच्छे अखलाक से भी पेश आ गए, लेकिन बंदगी वाला अंसर उसके अंदर नहीं था तो भी कामयाब नहीं हुए, ठीक है ना। तो ये एक एक ऐसा नुक्ता है कि जो कि काश के हम मुसलमानों को समझ में आ जाए। हम आजकल जो है वो मुसलमान बनना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कैसे मुसलमान बनना है। हम जो है मुसलमान बनने के लिए वही स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हैं कि जो कि काफिर जो है वो इनको इस्तेमाल कर रहा होता है ना। तो इस वजह से हम पता नहीं अजीब गरीब किस्म की एक परप्लेक्स सिचुएशन के अंदर है। बंदगी बनना जो है ना, बंदगी अब इख्तियार करना, ये मुसलमानियत है। अगर बंदगी इख्तियार नहीं करी, बल्कि आपने ऊपर से जो है वो बाल उगा लिए या कपड़े पहन लिए या खास किस्म की जो है वो चक्कर वक्कर लगाने शुरू कर दिए, लेकिन बंदगी नहीं है, तो फिर मुसलमान नहीं बन सके, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं कि लैलन मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा। लैल ये रात को कहते हैं, रात का वक्त। रात का वक्त क्या वक्त होता है? रात का वक्त वो वक्त होता है कि जब दिन का वक्त नहीं होता, ठीक है। रात की क्या तारीफ है, क्या क्या समझने का सबसे आसान तरीका है कि जब दिन नहीं होता, ठीक है, तो दिन क्या चीज होती है भाई? जब रात नहीं होती, है ना। जब दो चीजें होती हैं ना, तो दो चीजों में से किसी एक को समझने के लिए बड़ा आसान मामला हो जाता है कि दूसरे की नफी हो गई तो वो पहला बन गया, पहले की नफी हो गई तो वो दूसरा बन गया, ठीक है। तो दिन और रात को जो आम डिफाइन अल्लाह ताला ने जिस तरीके से किया था, जिस तरीके से बनाया था, वो रोशनी की मौजूदगी और रोशनी की गैर मौजूदगी, ठीक है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी और सूरज की रोशनी की गैर मौजूदगी, इस तरह से दिन और रात को अल्लाह ताला डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यानी अल्लाह ताला ने अपने बंदे को जो चलाया ना, तो वो उस वक्त में चलाया जबकि सूरज की रोशनी नहीं होती है, ठीक है, जिसको रात कहते हैं, लैल कहते हैं। कहां से कहां तक चलाया? मिन यानी से, फ्रॉम अल मस्जिद अल हराम, ठीक है, मुहर्रम मस्जिद, मुहतरम मस्जिद, जो कि ये लफ्ज जो है वो सिर्फ मक्का मुकरमा के अंदर काबतुल्ला के गिर्द जो मस्जिद है, या जिस जिस इबादतगाह के अंदर अल्लाह का घर है, उसको मस्जिदुल हराम कहते हैं। उसके अलावा मस्जिदुल हराम जो है वो किसी दूसरी मस्जिद को नहीं कहते, ना मदीना मुनव्वरा के अंदर जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसको मस्जिद हराम कहते हैं, ना मक्का मुकरमा के अंदर किसी और मस्जिद को मस्जिद हराम कहते हैं। सिर्फ एक ही मस्जिद है पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, उसको अल मस्जिदुल हराम कहते हैं। यहाँ पर हराम से मुराद जो है वो नऊज़ बिल्लाह जैसे सुअर हराम है, शराब हराम है, ठीक है, नहीं, बल्कि वो चीजें नजासत की वजह से हराम है, बुराई की वजह से हराम है कि उनके पास नहीं जाना, ठीक है। झूठ हराम है, बल्कि यहां पर जो लफ्ज हराम है ये मुहर्रम से निकला, ठीक है, यानी जिसके अंदर एहतराम, हुरमत वाला, जज़ाकल्लाह, ठीक है, एहतराम वाला, तो ये मस्जिद हराम है। और यहाँ पे फिर उसके पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ उसकी पाबंदियां होती हैं, आदाब होते हैं जो इस तरह वाली चीजें होती हैं उनके। इला अल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद अक्सा की तरफ। अक्सा जो है वो एक साइड को कहते हैं, तरफ को, ठीक है। तो ये वो मस्जिद है जो कि एक साइड पर है, ठीक है। अल्लजी बारकना हौलहू, वो जिसका के वो जिसके अंदर के बारकना, हौलहू बारकना का मतलब हमने, फिर हरमैन शरीफैन क्यों कहते हैं जब ये एक मस्जिद है? हरमैन शरीफैन क्यों कहते हैं जब ये एक मस्जिद है? हरमैन जो है वो दो हरम, ठीक है, दो हरम। तो मस्जिदुल हराम सिर्फ एक मस्जिद है और दूसरी मस्जिद जो है वो मस्जिद नबवी है, वो भी हरम है, वो मस्जिदुल हराम नहीं है। लेकिन हरम ये कोई थोड़ी कहा कि हरम एक ही है दुनिया के अंदर, ये कोई थोड़ी कहा था। तो हरम तो एक से ज्यादा है, एक अल्लाह ताला का करार दिया हुआ हरम है मक्का मुकरमा के अंदर, एक नबी अलैहिस्सलाम का करार दिया हुआ हरम है मदीना मुनव्वरा के अंदर, ठीक है। और यही सबसे अफजल और सबसे बड़े हरम है। तो इन दोनों को मिला करके जब बोला जाता है तब हरमैन शरीफैन कहा जाता है, ठीक है। और आपको, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा कि ये यानी ड्यूअल का सीगा है ना, तस्निया का। तो हरम तो आपका जो अपना घर होता है ना, वो भी घर वाले का हरम होता है, ठीक है ना, कि जी वो उसने दरवाजे के ऊपर ताला लगाया हुआ होता है, या पाबंदियां होती हैं कि भाई हर ऐरा गैरा नथु गैरा मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकता, मेरे घर का एक एहतराम है, एक सैंक्टिटी है मेरे घर की, ठीक है ना। तो जो घर के बड़े होते हैं ना, उनका वो हरम होता है, ठीक है, जिसके अंदर उनके अपने रूल्स चलते हैं, उनके अपने जो है वो यानी उनके औरतों की जो है वो शर्मो हया और वो उसका लिहाज किया जाता है, ठीक है। तो हरम जो है ना वो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है इसका। बहरहाल तो हरमैन शरीफैन तो खाली मस्जिद हराम और मस्जिद नबी दोनों को मिला करके कह देते हैं। अच्छा, बारकना हमने बरकत रखी, हौलहू हौल, हौल का लफ्ज जो है ना वो इर्द गिर्द के जो माहौल होता है, उर्दू जुबान के अक्सर अल्फाज जो है वो अरबी से आए। तो उर्दू में हम कहते हैं माहौल, माहौल ये क्या है, ये अरबी के दो लफ्ज हैं, मा का मतलब जो, ठीक है, और हाउल का मतलब इर्द गिर्द। तो जो कुछ इर्द गिर्द में है उसको माहौल कहते हैं उर्दू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर तो अरबी पढ़ रहे हैं तो इस वजह से सिर्फ हौल का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। बारकना हौलहू, हमने बरकत दे दी उसके हौल में, उसके अतराफ में। माशाल्लाह आपकी भी को टीचर भी आदर में एक अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके अतराफ के अंदर हमने बरकत दे दी, लिलुरियहू ताकि हम दिखलाएं, ठीक है, रा यरा, ठीक है। तो यानी हम दिखलाएं, ये मुतकल्लम का सीगा है, जमा मुतकल्लम, हम दिखलाएं उसको। हु जो है ना, जैसे हौल के अंदर भी हु है और लिलुरियहू के अंदर भी जो आखिर में हु है, ये जमीर कहलाती है, प्रोनाउन कहलाता है, अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। तो हौलहू के अंदर जो हु था वो तो अल मस्जिदुल अक्सा की तरफ पॉइंट कर रहा था, और लिनुरियहू के अंदर जो हु है वो अब्द की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये उसका प्रोनाउन है, अब्द का प्रोनाउन है, ठीक है। ताकि उसको दिखाएं, मिन आयात ना, अपनी निशानियों में से, आयात आयत की जमा, और आयत जो है वो निशानी को, निशानी क्या चीज होती है, जिसके अंदर निशान होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना जो किसी चीज की तरफ निशानदही करती है तो उसको निशानी कहते हैं। ये मेरे वालिदे मरहूम की या वालिदा मरहूमा की निशानी है, क्या मतलब, वालिदा मरहूमा जो है वो तो कब्र के अंदर है अपने, ठीक है ना, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, लेकिन घर के अंदर जो ये चीज है ना, ये मुझे याद दिलाती है उनकी, ठीक है, जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे अम्मी याद आ जाती है। तो ये निशान, ठीक है, उस तरफ पॉइंट करती है वालदा की तरफ। तो अल्लाह ताला की जो निशानियां हैं उनका मकसद क्या है, कि वो अल्लाह की तरफ पॉइंट करें, अल्लाह ताला की याद दिला दें, ठीक है। अगर हमें उनको देख करके अल्लाह याद नहीं आ रहा तो फिर तो उस निशानी का इफेक्ट नहीं है, हमारी जिंदगी में उसका इफेक्ट नहीं है, है ना। दो बच्चे हैं अम्मी के, एक बच्चे को जो है वो निशानी देख करके अम्मी याद आती है, दूसरे बच्चे को निशानी देख करके अम्मी याद ही नहीं आती। ठीक है, तो इसके अंदर निशानी का कसूर है, अम्मी का कसूर है या बच्चे का कसूर है ना? तो हम तो यही कहेंगे बच्चे का कसूर है कि भाई क्यों आपको अम्मी याद नहीं आ रही। ठीक है, तो इसी तरीके से अल्लाह ताला की निशानियां जा बजा हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं, लेकिन हम उनको देखते हैं, हमें अल्लाह याद नहीं आता, तो ना निशानी का कसूर ना अल्लाह का कसूर, बल्कि हमारा कसूर कि हम इतने गाफिल हो गए हैं अपने रब से कि निशानी के बावजूद हमें वो याद नहीं आता। हालांकि यानी उसूल तो ये होना चाहिए कि निशानी विशानी की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं तो हर वक्त ही अल्लाह ताला याद रहना चाहिए, यानी कि आंखें बंद हो, कुछ नजर ना आ रहा हो, तब भी अल्लाह याद रहना चाहिए। ठीक है, आंखें खुल जाएं तो खुलने के बाद तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई निशानी ना हो, है ना? फिर तो यानी मेरा हाथ भी अल्लाह की निशानी है कि अल्लाह ने मुझे दिया है। ठीक है ना, मेरे जो है वो औलाद जो सामने है वो भी अल्लाह की निशानी है कि वो अल्लाह ताला ने मुझे दी है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की निशानियां, तो इसका ये मकसद होता है कि हमें हर चीज अल्लाह ताला की याद दिलाए। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो असमी है, हर चीज सुनने वाला है। ठीक है, हमारी तरह नहीं कि बस जो हमारे फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर होगी वो आवाज हमें आएगी, बाकी हमें कोई आवाज नहीं आती। ठीक है, बल्कि अल्लाह ताला को हर आवाज आती है, चाहे ना भी निकल रही हो बल्कि दिल ही दिल के अंदर हो, है ना? वो तो दिलों की आवाज भी सुनता है, वो तो तख्तुल जुबान भी जो कहीं भी बातें होती हैं वो भी सुनता है, असमी, और सारी फ्रीक्वेंसी रेंजेस को अल्लाह ताला सुनता है। अल बसीर, जो कि सब कुछ देखने वाला है। अल बसीर, अलिफ लाम का जो लफ्ज है, तो जो किसी चीज को मारिफा बना देता है किसी लफ्ज को। ठीक है, तो अलिफ लाम लगने से क्या होता है कि उसके अंदर चीज के अंदर जो है ना वो एक कमाल आ जाता है, एक इस्तियाब आ जाता है, वो हर चीज को घेर लेती है। ठीक है, और अगर अलिफ लाम ना लगा हुआ हो तो पोर्शन, ठीक है, सिर्फ जो है वो एक हिस्सा मुराद होता है, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे लैलन के अंदर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, ऊपर लैलन, तो चूंकि अलिफ लाम नहीं लगा हुआ इसलिए यहां पर लैलन से मुराद रात का एक हिस्सा, एक पोर्शन ऑफ द नाइट। ठीक है, अगर अलिफ लाम लग जाता तो पूरी रात मुराद होती। ठीक है, तो अलिफ लाम अल असमी और अल बसीर में लिखा हुआ, यानी समाअत और बसारत कामिल दर्जे में, वो अल्लाह ताला की जात की सिफत है। ये तो हो गया जी तर्जुमा, और थोड़ा सा तफसीर जो कि हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बयानुल कुरान से यहाँ पर लेते हैं, तो वही बयान कुरान के अल्फाज हजरत यहाँ पे नकल कर देते हैं। इस सवाए चंद मुकाम यहाँ पर के बहुत मुश्किल लफ्ज होता है, तो वो उसकी थोड़ी आसान लफ्ज उसके बदले में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो खुलासा तफसीर में फरमाते हैं, और ये इसके फॉर्मेट या इसका तरीका ये होता है कि जो तख्तु सतर है अंडरलाइंड, तो वो तर्जुमा होता है, और उसके आगे जो बैनुल कौसैन विद इन द ब्रैकेट्स जो इबारत होती है वो तफसीर होती है, और वो मुख्तसर ही होती है, इस वजह से इसको खुलासा तफसीर का। तो वो जात पाक है जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, तो बंदे की क्या तफसीर है, कौन बंदा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो ये तफसीर हो गई बंदे की। वो शब के वक्त मस्जिद हराम, कौन सी क्या है मस्जिद हराम, अब हो सकता है किसी को ना पता हो, जैसे हमें भी अगर नहीं पता था तो ब्रैकेट्स में लिख दिया, यानी मस्जिद काबा। काबा जो है वो दुनिया के अंदर एक ही है। ठीक है, जो अजीब लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो काबा को जो है वो मस्जिद बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे अब्राहम ने बनाने की कोशिश करी थी, अल्लाह ताला ने उसको नीस्त नाबूद कर दिया। ठीक है, तो काबा तो एक ही है ना, तो मस्जिद काबा यानी मस्जिद हराम को किस चीज से डिफाइन किया, काबा वाली मस्जिद से, मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस, ठीक है, तकद्दस वाला घर, तो वो जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक ही मशहूर है, बैतुल मुकद्दस के नाम से फलस्तीन के अंदर है तक। ठीक है, यानी वहां से वहां तक, जिसके आसपास के मुल्क शाम है। ठीक है, तो बैतुल मुकद्दस का जो एरिया है ना, तो उसका नाम जो है वो फलस्तीन है, लेकिन ओवरऑल जो बिगर एरिया जो कहलाते हैं ना, जो बड़ा नाम है, जैसे कि आप मुल्क कह लें, तो वो मुल्क शाम कहलाता है। ठीक है, फलस्तीन जो है वो एक तरह से सूबा, यानी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी है। जैसे हमारे यहाँ सूबे होते हैं इंडिया के अंदर, जो है वो जिसको स्टेट कहते हैं। ठीक है, कंट्री जो है ना, मुल्क जो है वो शाम का मुल्क कहलाता है, जो शिमाल में है। ठीक है, शिमाल की तरफ जो डूबी था ना, तो अरब उसको शाम कहते थे। तो वो उसका माहौल है बैतुल मुकद्दस का। हमने दीनी और दुनियावी बरकतें रखी हैं। बारकना अवलहू, दीनी बरकत क्या है? वो ये है कि वहां बकसरत अंबिया मदफून है, दफन है अंबिया बकसरत। ठीक है, बनी इसराइल के ज्यादातर अंबिया जो है वो वहीं पर मदफून है, और बनी इसराइल को 10,000 से ज्यादा अंबिया थे। ठीक है, तो अब कोई दफन दफन है, तो उसके दफन होने की वजह से बरकत हो गई। ठीक है, तो सोचें कि जब वो जिंदा थे तब कितनी बरकत होगी। ठीक है, अभी तो वो यानी अबव ग्राउंड के बजाय बिलो ग्राउंड है। ठीक है ना, अभी तो वो नजर नहीं आते, अभी तो उनकी आवाज नहीं आती। ठीक है ना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में कोई दूसरा नबी जिंदा नहीं था, है ना, सारे के सारे मदफून है वहां पे। लेकिन उनके मदफून होने के बावजूद उनकी बरकत मौजूद है। ठीक है, ये बारकना हौलहू की तफसीर मशायख ने लिखी। एक हदीस मुबारक भी, अलबरकतु मा अकाबिरकुम, कि बरकत तो तुम्हारे अकाबिर के साथ है। अकाबिर यानी बड़ों के साथ है, और नबियों से ज्यादा बड़ा तो कोई और नहीं है ना इंसानों के अंदर। ठीक है, तो जहां बुजुर्ग होते हैं तो बुजुर्गों की मईयत के अंदर बरकत होती है। ठीक है, तो अपने बड़ों के साथ जो रहता है तो वो बरकत के साथ रहता है, और बड़ों से हट करके जो रहता है तो वो बेशक बहुत ज्यादा चीता किस्म का इंसान हो, बहुत ज्यादा उसकी जो है वो यानी सलाहियतें हों, और अकल हो, फहम हो, या दूसरी किस्म की ताकतें हों, लेकिन बरकत नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है, बरकत क्या चीज होती है? बरकत की फिर बहुत सारी तफसीर हो सकती है, लेकिन बरकत का मतलब कि जो आपके पास अवेलेबल है वो आपके लिए काफी शाफी हो जाए, सफिशेंट हो जाए। ठीक है, और सफिशिएंट होने का मतलब क्या होता है भाई? काफी शाफी हो जाने का मतलब क्या होता है? कि आपका दिल मुतमईन हो जाए उससे। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर किसी की सैलरी जो है वो आज के तो आप तो लाखों में सैलरी जारी होती है, तो 1 लाख सैलरी है किसी की। ठीक है ना, लेकिन वो बेइत्मीनानी का शिकार है ना, उसकी जो है वो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, उसकी जो है वो हद तक की जरूरियात पूरी नहीं होती, यानी बेसिकली एक जो है ना वो टेंशन में रहता है हर वक्त। लाख सैलरी है, ठीक है ना, एक शख्स की जो सैलरी है वो 50,000 रुपए या 30,000 रुपए है, लेकिन खुश है, मुतमइन है। ठीक है ना, हर वक्त जो है वो एक डिप्रेशन के अंदर नहीं रहता कि भाई और कहाँ से आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इसकी जिंदगी में बरकत है, जबकि दूसरे के अंदर कसरत तो है, यानी कसीर है ना, वो 1 लाख जो है वो 50,000 के मुकाबले में कसीर है, लेकिन बरकत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से बरकत जो है वो सेहत में भी होती है, बरकत जो है वो वक्त के अंदर भी होती है, बरकत जो है वो यानी हर चीज के अंदर बरकत है या बरकत नहीं है। तो बरकत जो है वो बड़ों के साथ होती है। अब बड़ों से मुराद क्या? कि हर बंदा जिसकी जो है वो दाढ़ी सफेद हो गई, वो बड़ा हो गया, तो वो तो फिर अबू जहल की भी, अबू जहल और अबू लहाब और वलीद और उमैया, ये सारे भी बड़े थे, मक्का मुकरमा के बड़े थे, तो इनके साथ भी बरकत थी। हर बड़े के साथ बरकत होती है? नहीं, हर बड़े के साथ बरकत नहीं होती, बल्कि अकाबिर से मुराद यहाँ पर क्या है कि जो के हक के ऊपर हो, वो उलमाए हक हो या जो है वो अवामुन नास में से, लेकिन नेकी के ऊपर हो। अल्लाह ताला की नाफरमानी, नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करने वाले बड़े नहीं, बल्कि फरमाबरदारी करने वाले बड़े, चाहे उनके पास बाकायदा फॉर्मल इल्म हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फरमाबरदारी करने वाले जो बड़े होते हैं ना, उनके साथ जो है वो बरकत होती है। ठीक है, तो अंबिया तो वहां बकसरत अंबिया मदफून है। ठीक है, तो उनकी मौजूदगी अभी भी है। यानी मदफून होने का मतलब क्या है कि बेशक حیات دنیا کے اندر وہ نہیں ہے لیکن حیات برزخ ان کو حاصل ہے نا, وہ مرکب کر کے جو ہے وہ بالکل یعنی ختم نہیں ہو گئے, بالکل ہی جو ہے نا وہ یعنی ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ بالکل غائب نہیں ہو گئی, ختم نہیں ہو گئی, بلکہ عالم برزخ کے اندر موجود ہے. اب یہ عالم برزخ جو ہے تو وہ تو بھائی پھر فلسطین کے اندر عالم برزخ ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ برکت ہے. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب بھائی عالم برزخ جو ہے وہ اگر مارس پہ ہوتا یا عالم برزخ جو ہے وہ پہلے آسمان پر ہوتا یا دوسرے آسمان پر ہوتا تو پھر فلسطین کے اندر انبیاء, یہ کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ تو کیا پتا چلتا ہے کہ عالم برزخ جو ہے نا وہ آسمان اول یا آسمان دوم یا جو ہے وہ کہیں اور نہیں ہے بلکہ اسی زمین کے اندر ہے, اسی پلانٹ ارتھ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, بس اوپر ہونے کی بجائے نیچے ہے. ٹھیک ہے نا, اب وہ نیچے جو ہے وہ اس فارم کے اندر ہے جو کہ ہم اپنی ان فائیو سینسز سے ان کو پرسیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ قبروں کے اندر انبیاء موجود ہیں اور وہ بھی ایسی حیات کے ساتھ موجود ہیں کہ جو کہ قبروں کے اوپر زمین کے اوپر برکت کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو ایک عقلی دلیل ہو گئی کہ بھائی انبیاء علیہ السلام کی قبروں کا اگر پتہ ہو تو وہاں پہ جاؤ گے تو برکت ملے گی. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام کی قبر کا تو 100% پتہ ہے, کوئی اس کے اندر احتمال کی گنجائش ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں پر مدفون ہے, تو وہاں پر کیوں نہ جائیں بھائی. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو عقلی دلیل ہو گئی. اس کے بعد عقلی دلیلیں یا حدیثوں سے ثابت بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کسی دوسرے نبی کی قبر کنفرم نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کنفرم ہے کہ بیت المقدس میں جو ہے وہ بہت سارے انبیاء مدفون ہیں. اب اگزیکٹلی کدھر کدھر مدفون ہے یہ کنفرم نہیں ہے, نا مشہور ہے کچھ جگہیں لیکن کنفرم نہیں ہے. اسی طرح صحابہ کرام کی قبور جو ہیں, انبیاء کے بعد درجہ ہی صحابہ کرام کا آتا ہے, تو صحابہ کرام کی قبور کا کہیں پہ پتہ چل جائے تو وہاں پر بھی پھر برکت کے لیے انسان جائے, اور اس کے علاوہ دوسروں کی قبور کے اوپر. لیکن قبور کے اوپر جا کر کے غیر شرعی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, قبور پہ جا کر کے جو ہے وہ یعنی سجدہ کرنے کی اور کوئی ایسی غلط کام کرنے کی جس کے اندر شریعت کی اجازت نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے جا کر کے, لیکن یہ نہیں ہے کہ قبروں پہ جا ہی نہیں سکتے, ہے نا, اور بالکل جو ہے منع ہے قبروں پہ جانا, نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آگے پھر دنیاوی برکت فرماتے ہیں کہ بھائی خالی یعنی دینی برکت روحانی برکت کے بعد دنیاوی برکت بھی ہے, مٹیریل برکت بھی ہے. وہ کیا ہے کہ وہاں باغات اور نہروں چشموں اور پیداوار کی کثرت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو شام کا علاقہ ہے اس میں جو آج کا ملک ترکی کا جو ملک ہے اس کا جنوبی ایریا اور جو ہے وہ اردن اور یہ آپ کا جو شام ہے جس کو شام آج بھی کہتے ہیں, سیریا جس کو کہتے ہیں, اور فلسطین کا پورا ایریا, تو یہاں پہ بہت یعنی اس قسم کی چیزیں موجود ہیں, باغات اور نہریں اور چشمے پیداوار ہوتا ہے نا. سب سے زبردست جو وہاں کی پیداوار ہے وہ آلیوز ہے. ٹھیک ہے, زیتون, اور زیتون کے اندر جو ہے وہ یعنی بے شک کچھ لوگوں کو زیتون کا تیل اتنا اچھا نہ لگتا ہو کیونکہ ان کی جو ہے نا وہ عادت خراب ہوئی ہوئی ہے دوسرے قسم کے تیلوں کی, لیکن فائدہ جو ہے وہ زیتون کے تیل کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ یہاں تک سنا کہ اس کے اندر کولیسٹرول جو ہے نا, اس تیل کا کولیسٹرول بھی نیگیٹو کولیسٹرول ہوتا ہے جو کہ کولیسٹرول کو کاٹتا ہے, یعنی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہاں پہ موجود ہے. غرض اس مسجد اقصی تک عجیب طور پر اس واسطے لے گیا تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھلائیں, لنوریہو من آیاتنا. ٹھیک ہے, عجائبات قدرت سے حضرت نے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کیا, جن میں بعض تو خود وہاں کے متعلق ہیں, مثلا اتنی بڑی مسافت کو بہت تھوڑے سے وقت میں طے کر لینا. ٹھیک ہے, آیات کا ترجمہ حضرت نے عجائب قدرت سے کیا, یعنی عجیب کہتے ہیں کوئی چیز جو کہ بڑی کم دستیاب ہو, یونیک ہو. ٹھیک ہے, جس کو دیکھ کر کے جو ہے نا وہ انسان کو ایک ایک یعنی ایک عجیب بات لگے. ٹھیک ہے, تو قدرت کی عجائبات تو ان میں سے تو بس یہی تھا کہ بھائی اتنے لمبے سفر کو جو ہے وہ اتنی تھوڑی سی دیر میں طے کرنا, یہ بھی یہ بذات خود جو ہے یہ سفر عجائب قدرت میں سے تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو دکھایا کہ دیکھو تم لوگ جو سفر کرتے ہو ऊंट के ऊपर, घोड़े के ऊपर, खच्चर के ऊपर, तो कितना टाइम लगता है तुम्हें सफर करने में? देखो मैंने तुम्हें सफर करवाया, कितना तेजी से सफर करवा दिया, ठीक है? तो ये चीज दिखाई अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को। और फिर उसके बाद सब सब अंबिया से मुलाकात करना और उनकी बातें सुनना वगैरह, ठीक है? ये भी नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिखाया। और बास आगे के मुतालिक हैं, यानी आगे जो फर्दर सफर हुआ उसमें भी बहुत सारी अजायब कुदरत नबी अलैहिस्सलाम को दिखाए। तो नुरियहू की ये सारी की सारी तफसीर हो गई, मसलन आसमानों पर जाना और वहां के अजायबात का मुशाहिदा करना। बेशक अल्लाह ताला बड़े सुनने वाले, बड़े देखने वाले हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल को सुनते और अहवाल को देखते थे, ठीक है? अस्समी और अलबसीर, तो यानी सिर्फ दुनिया के अंदर नहीं सुनते थे, बल्कि जब ये सफर के हालत में थे, और वो सफर दुनिया का सफर, फिर ऊपर का सफर, उस वक्त भी अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाले और सब कुछ देखने वाले, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल को सुनते और अहवाल को देखते थे, उसके मुनासिब उनको ये खास इम्तियाज और एजाज बख्शा और अपने कुर्ब खास का वो मुकाम अता किया जो किसी को नहीं मिला। ठीक है, ये तफसीरन हजरत ने आकर लिखा। अच्छा, अब हमारे पास टाइम कितना रह गया? 3 मिनट। तो मारफू मसाइल जितना पढ़ सकते हैं 3 मिनट में। तो फरमाते हैं कि इस आयत में वाकया मेराज का बयान है। तो इस आयत में वाकया मेराज का बयान है। मेराज मेरे की सभी को मालूम है कि क्या कहते हैं, अच्छा, लेकिन तफसीर हजरत ने लिखी है तो वो भी हम पढ़ेंगे। जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुसूसी एजाज और इम्तियाजी मुअज्जा है, यानी नबी के साथ जब कोई ऐसा मामला पेश आए जो कि आदतन इंसानों के साथ पेश नहीं आता, ठीक है, जो कि खिलाफ आदत होता है, जिसके अंदर जो है वो नॉर्म से हट करके कोई मामला होता है ना, ठीक है, जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ उसूल है इस दुनिया के अंदर कि भाई इंसान जो है वो उड़ नहीं सकता और इंसान जो है वो तैर नहीं वो जो है वो यानी बगैर तैरे जो है वो पानी के अंदर जो है वो फ्लोट नहीं कर सकता, और इस तरह के बहुत सारे उसूल, ठीक है, तो उनसे हट करके अगर कोई काम हो जाए कि ये कोई साहब जो है वो पानी के ऊपर चलना शुरू हो जाए, ठीक है, या कोई साहब जो है वो बगैर प्लेन के और बगैर जो है वो हेलीकॉप्टर के और बगैर जो है वो ग्लाइडर के वो उड़ना शुरू हो जाए, तो ये तो आदत के खिलाफ मामला हो गया, ठीक है ना? ये तो दुनिया का उसूल नहीं है कि इंसान जो है वो अपने हाथों से उड़ना शुरू हो जाए, ठीक है? तो अगर ऐसा मामला हो रहा है तो अगर तो वो उड़ने वाले साहब अल्लाह के नबी हैं, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा कि ये उनका मौजजा है, ठीक है, कि ये जो उड़ रहे हैं ना बगैर किसी चीज के खुद ही उड़ रहे हैं, क्योंकि नबी है ना, इसको कहेंगे ये मौजजा है। और अगर वो उड़ने वाले साहब जो हैं वो नबी नहीं है लेकिन बहुत नेक इंसान है जिसको वली कहते हैं, तो इसको कहा जाएगा कि ये जी इनकी करामत है, ठीक है। और अगर उड़ने वाले साहब जो हैं वो न नबी हैं न वली हैं बल्कि कोई गुनाहगार इंसान है, चाहे मुसलमानी क्यों ना हो लेकिन बहुत गुनाहगार किस्म का इंसान है, ठीक है, झूठ बोलने वाला, बेहयाई करने वाला, बेपरदगी करने वाला इंसान है, या काफिर है, उड़ रहा है लेकिन काफिर है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा कि ये उसकी इस्तिदराज है, उसका इस्तिदराज, ठीक है, तो काफिर भी उड़ सकता है, वली होना जरूरी नहीं है उड़ने के लिए, ठीक है, तो बस लफ्ज का इस्तेमाल मुख्तलिफ होगा कि उसका इस्तिदराज है। मुअज्जे का लफ्ज जो है वो वली के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है और काफिर के लिए इस्तेमाल करना तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अच्छा, तो नबी अलैहिस्सलाम के खुसूसी एजाज और इम्तियाजी मुअज्जा है। लफ्ज असरा इसरा उन से मुश्तक है, ठीक है, तो असरा जो है ये तो एक वर्ब है, फेल का सीगा है ये, लेकिन इसकी जो बुनियाद है ना वो अरबी जुबान का इसम मस्दर इसरा उन है, ठीक है, असरा युसरु इसरा अन, और इससे ये डिराइव किया गया है लफ्ज। मुश्तक का मतलब होता है डिराइव करना, यानी उसमें से अखस करना, जैसे जिसके लुगवी मानी रात को ले जाना है, ठीक है, यानी रात के चलने के लिए खास असरा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसके बाद लैलन के लफ्ज से सराहतन भी इस मफहूम को वाजह कर दिया कि वरना अगर लैलन का लफ्ज नहीं भी इस्तेमाल करते तो भी असरा से जो है ना वो ये बात वाजह हो जाती है कि रात को लेकर के गए, ठीक है। लेकिन जब किसी बात को एम्फेसाइज करना होता है तो बेशक एक लफ्ज से कोई बात क्लियर हो भी रही हो लेकिन फिर भी एक से ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसी एक बात को बयान करने के लिए दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तीसरा लफ्ज भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर रात वाले कॉन्सेप्ट को या रात वाले फैक्ट को जो है ना वो यानी नेल डाउन करना चाहते हैं कि रात ही को मैं लेकर के गया, तो असरा के साथ फिर लैल का लफ्ज इस्तेमाल किया। या एक और भी इसकी रीजन क्या है, जैसे पहले बता चुके हैं कि लैलन से क्या पता चल गया कि पूरी रात नहीं चलते रहे बल्कि सिर्फ रात के एक हिस्से में चले हैं, ठीक है। अगर लैलन का लफ्ज इस्तेमाल ना होता, सिर्फ असरा का लफ्ज इस्तेमाल होता तो ये तहदीद नहीं होती कि कितनी देर तक रात में ये सफर होता रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज की क्लास खत्म करते हैं क्योंकि वक्त मुकम्मल हो गया है। बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में ही फिर पीर के दिन ये क्लास होगी। बुध की क्लास के बारे में, क्योंकि हमारा सफर प्लान है, अगर अल्लाह की मर्जी से वो सफर हुआ इंशाल्लाह होगा उम्मीद है कि, तो बुध वाली क्लास जो है ना वो फिर इस वीक में नहीं होगी, ठीक है। किसी ने कुछ पूछा है कि रोजमर्रा में हम कहते हैं कि ये तो मोजजा हो गया, कि इस तरह हो गया या कि इस तरह नहीं हुआ, ये कुफरिया कलमा है। नहीं, इतना तो उलमा ने नहीं कहा है कि किसी ने ये कह दिया कि ये तो मोजजा हो गया, तो ये कुफरिया कलमा तो नहीं, ठीक है। बल्कि मतलब ये गलत कलमा है, बुरा कलमा है, गैर मुनासिब कलमा है, या इंसान की जहालत का इजहार हो रहा है ऐसे कि उसको ये बात नहीं पता कि मौजा जो है वो हर चीज को नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हर चीज को कुफर नहीं कह सकते, चले ठीक है। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।